पेज नंबर 99, चैप्टर नंबर 13।
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.literaria.edu.pk।
उमर के बारे में क्या बात कर रहे थे? वो भी कुछ फिक्रमंद हो गई थी। नानू अब बहुत उलझी हुई लग रही थी। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है। नानू बड़बड़ाई थी। अंकल जहांगीर कल पाकिस्तान आएंगे? उसने इस बार सवाल बदल दिया था। नहीं पाकिस्तान तो वो दो दिन पहले ही आ चुका है। उन्होंने आपको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? पता नहीं, मिलने भी नहीं आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी मर्जी। पहले तो सीधा यहीं आया करते थे। पहले तो बात ही और थी। पहले तो तुम्हारे नाना की वजह से सीधा यहीं आया करता था। अब जब से उनकी डेथ हुई है, जहांगीर बहुत लापरवाह हो गया है। अंकल लाहौर में ही हैं? पता नहीं, ये मैंने नहीं पूछा। हो सकता है लाहौर में ही हो, ये भी मुमकिन है अभी कराची में हो। कल किस वक्त आ रहे हैं? कह रहा था कि शाम को आएगा। आपने उनसे पूछा कि यहाँ कितने दिन रहेंगे? तुम बेवकूफ़ हो अलीज़ा, भला मैं ये कैसे पूछ सकती थी। वो सोचता माँ को पहले ही इसकी वापसी की फिक्र बढ़ गई है। अलीज़ा का चेहरा हिफत से थोड़ा सुर हो गया था। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो इसलिए पूछना चाह रही थी ताकि उनका कमरा उसी तरह सेट कर सकूं। रहेंगे तो यही ना? हाँ कह तो यही रहा है कि यहीं रहेगा। मुझसे कह रहा था कि उमर को इसकी आमद के बारे में कुछ ना बताऊं। मैंने कहा कि उमर तो यहाँ है ही नहीं। कहने लगा कि फिर भी उसे मेरे आने की इतला नहीं होनी चाहिए। अंकल जहांगीर ने ऐसा क्यों कहा? अलीज़ा कुछ हैरान हुई थी। आखिर उमर से वो अपनी आमद क्यों छुपाना चाह रहे हैं? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। पता नहीं अंकल जहांगीर और उमर का इतना झगड़ा क्यों होता रहता है। दोनों गुस्सावर हैं, दोनों ही अपनी बात मनवाने वाले हैं। फिर झगड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। बहरहाल तुम जहांगीर के लिए भी कमरा तैयार करवा दो। नानू अंकल अकेले आ रहे हैं? हाँ अकेला ही आ रहा है। नानू उठकर किचन की तरफ चली गई थी। अलीज़ा कुछ देर खामोशी से वहाँ बैठी कुछ सोचती रही, फिर उठकर उमर के कमरे की तरफ आ गई थी। कमरे में उमर के कलोन की महक अभी तक मौजूद थी। वो कुछ सोचते हुए स्टडी की तरफ गई थी। वहाँ उमर का वो स्केच मौजूद नहीं था जो उसने कल वहाँ रखा था। इसका मतलब ये था कि उमर वो स्केच देख चुका था। इसे नामालूम सी खुशी हुई थी। वो वापस मुड़ने को थी जब उसकी नज़र स्टडी टेबल के पास पड़ी वेस्ट पेपर बास्केट पर पड़ी थी। उसमें सिर्फ एक मुड़ा तोड़ा कागज़ पड़ा हुआ था और वो इस कागज़ को हाथ लगाए बगैर भी जानती थी कि वो कौन सा कागज़ था। अंकल जहांगीर दूसरे दिन शाम को पहुंच गए थे। उनका मूड वाकई इस बार कुछ और ही तरह का था। हर बार जब भी आते थे तो बहुत बहुत खुशगवार मूड में होते थे। अलीज़ा से काफ़ी गर्म जोशी से हाल अहवाल पूछा करते थे, मगर इस बार वो बहुत संजीदा थे। अलीज़ा से उनकी रस्मी सी इस्लाम दुआ हुई थी। उसके बाद वो नानों के साथ उनके कमरे में चले गए थे। वहाँ उन दोनों के दरमियान क्या क्या बातें हुई थी वो नहीं जानती थी और ना ही उसने जानने की कोशिश की थी। उसने बस मुलाजिम के हाथ चाय और कुछ खाने की चीज़ें अंदर भिजवा दी थी। एक डेढ़ घंटे बाद अंकल नानों के साथ बाहर लॉन्च में निकल आए थे। अलीज़ा ने नानों के चेहरे पर भी टेंशन देखी थी। बहुत अरसे के बाद वो इस तरह परेशान नज़र आ रही थी। लॉन्च में बैठने के थोड़ी देर बाद उमर का फ़ोन आ गया था। वो एयरपोर्ट पर था और ड्राइवर भेजने के लिए कह रहा था। नानों ने इसका फ़ोन रिसीव किया था और ड्राइवर को भिजवा दिया था। एक घंटे के बाद पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। अलीज़ा ने अंकल के चेहरे पर नज़र दौड़ाई थी। वहाँ तनाव में इजाफा हो गया था। पिछले एक घंटे से वो नानू और अंकल जहांगीर की बातें सुन रही थी और वो दोनों लॉन्च में बैठे फैमिली मेंबर्स के बारे में मामूल की गुफ्तगू में मसरूफ थे। मगर इनकी गुफ्तगू में गर्मजोशी या खुशी नहीं थी। यूं लग रहा था जैसे वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए बातें कर रहे थे। अलीज़ा ने एक गहरी सांस ली थी। लॉन्च का दरवाज़ा खुला और उमर अपने ही रो में अंदर आया था। पहला कदम अंदर रखते ही वो ठटक कर रुक गया। अलीज़ा ने इसके चेहरे पर मौजूद हल्की सी मुस्कुराहट को गायब होते देखा। वो अंकल जहांगीर को देख चुका था और अलीज़ा ने इससे पहले इसके चेहरे को कभी इतना बेतासुर नहीं देखा था। उसने अंकल जहांगीर को एक नज़र देखा और फिर गहरी नज़रों से नानों को देखा था और इस वक्त अलीज़ा को इसकी आंखों में शिकवा नज़र आया था। दरवाज़ा बंद करके वो अब आगे बढ़ आया था। اسلام علیکم کے دو لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رک کے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا تھا۔ انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ علیزہ تم جاؤ اور اسے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانے کے لیے آ جائے، کھانا تیار ہے۔ نانو نے اسی لمحے علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے دو تین بار دستک دینی پڑی تھی، پھر وہ رک گئی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو، اس نے سوچا تھا۔ چند منٹ وہ وہیں دروازہ کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی، پھر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تھی۔ اس بار اسے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، فوراً ہی اسے عمر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا، اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ نانو کہہ رہی ہیں کہ آپ کھانے کے لیے آ جائیں، علیزہ نے نانو کا پیغام اسے دیا تھا۔ پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے ہیں۔ اور تم لوگوں کو پہلے سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ کل انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کا بتایا تھا۔ صبح جب میں نے گرینی کو فون کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ انکل نے نانو کو منع کر دیا تھا کہ وہ ان کے آنے کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، یوں جیسے اس کی بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانی شروع کر دی تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو اس کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد انہیں کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی اور وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی عمر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا، کچھ کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے، اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کر رہی تھی۔ عمر سر جھکائے ہوئے ایک لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہوئے باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی۔ عمر نے سویڈش کھانے کے بعد پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا اور وہ منہ پونچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ عمر، اب تم میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ علیزہ نے یکدم اس کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ مجھے اس وقت کسی سے بھی کچھ بھی بات نہیں کرنا ہے، میں بہت تھک چکا ہوں اور جو واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے تو وہ میں صبح سن لوں گا، اور اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ تو کوئی بات سننا ہے اور نہ کسی سے کوئی بات کرنا ہے۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ علیزہ جان گئی تھی اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے دیکھے تھے، انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی۔ کیوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنا تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں ابھی کرنی ہیں، یہ تم اچھی طرح سن لو۔ تم اس طرح سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے جہانگیر، کیوں اس طرح چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، گرینی انہیں چلانے دے، پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے۔ عمر، تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ باپ ہے تمہارا، اس بار نانو نے عمر کو جھٹکا تھا۔ یہ باپ نہیں ہے، ٹریڈر ہیں، ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیز ہوں یا پھر اولاد، اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں اس کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے ترشی سے نانو سے کہا تھا۔ آپ نے ہی خواہش کی تھی باتیں سننے اور سنانے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ عمر، تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر سے کہا تھا۔ مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنا ہے تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ انکل جہانگیر ہونٹ بینچے ہوئے اسے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا تھا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے اس لیے زیادہ تلخ ہو گیا ہے، تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور کچھ نرمی سے بات کرنا، وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے، जवान है, इंडिपेंडेंट है और इस तरह वो कभी बात नहीं सुनेगा। नानू अंकल जहांगीर को समझा रही थी, आपका क्या ख्याल है कि मैंने इसे नरमी से बात नहीं की है? मैं इसे हर तरह से बात कर चुका हूँ मगर वो अपनी बात पे जमा हुआ है। इसे एहसास ही नहीं है कि इसकी ज़िद मेरे लिए कितनी नुकसानदह साबित हो सकती है। वो तेज़ आवाज़ में नानू से बात कर रहे थे जो बड़ी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। ठीक है, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं हो सकता, वो सोने चला गया है, तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह देखूंगी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। नानू ने अंकल जहांगीर को दिलासा देते हुए कहा और वो अंकल जहांगीर को अपने साथ लेकर टेबल से उठ गई। अलीज़ा चुपचाप वहीं बैठी अंकल जहांगीर की गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश करती रही। मुलाजिम टेबल से खाने के बर्तन उठाने लगा। वो सोचती रही कि इस बार उमर और अंकल के दरमियान वजह तनाज़ा क्या हो सकती है। इन दोनों के दरमियान होने वाला ये पहला झगड़ा नहीं था। अलीज़ा को ऐसे बहुत से मौके याद थे जब इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात होते रहते थे, मगर इस बार मामला यकीनन ज़्यादा सीरियस था। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी चली गई थी। उसका ख्याल था कि उसकी वापसी तक अंकल जहांगीर और उमर के दरमियान जो बात होना होगी हो चुकी होगी और घर का साफ शिकन माहौल बदल चुका होगा, मगर सपहर को वापसी पर इसे पता चला था कि उमर सुबह ही कहीं चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। अंकल जहांगीर का पारा आसमान से बातें कर रहा था और नानों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उमर शाम के वक्त वापस आया था और इस बार अंकल जहांगीर ने वक्त ज़ाया किए बगैर उसे बात करनी शुरू कर दी। वो लॉन्च में ही बैठे हुए थे और एलिजा चंद मिनट पहले ही उन्हें चाय देकर आई थी। मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि मुझे आपसे कोई बात भी नहीं करनी है। उमर ने लॉन्च में खड़े खड़े हाथ उठाकर कहा था। उमर ने नानों को बात भी मुकम्मल न करने दी थी। ग्रैनी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि कुछ दिन सुकून से गुजार सकूँ। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर वो लाउंज से निकल गया। नानों ने इसे आवाज़ दी थी मगर उसने उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। अलीज़ा जाओ, इसे जाकर कहो कि आकर चाय तो पी ले, नानों ने अलीज़ा से कहा। वो उठकर उमर के कमरे की तरफ आ गई थी। दस्तक की आवाज़ सुनते ही अंदर से उमर ने आवाज़ दी थी। अलीज़ा दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो गई थी। वो अपने गले में बंधी हुई टाई खोल रहा था। अलीज़ा ने नानों का पैगाम उसे पहुँचा दिया था। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, उसने बड़ी तुरशी से कहा। अलीज़ा ने इसके चेहरे पर थकन के आसार देखे थे। उसकी आंखों में सुर्खी थी, शायद वो रात को देर से सोया था। अलीज़ा को बेख्तियार इस पर तरस आ गया। इसका दिल चाहा कि वो अंकल जहांगीर को यहाँ से वापस भेज दें। अगर वो बात नहीं करना चाहता तो नानू और अंकल इसे क्यों मजबूर कर रहे हैं, उसने खुद ही जानबदारी से सोचा था। मैं चाय यहाँ ले आऊँ, अलीज़ा ने हमदर्दी से उसे पूछा था। नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसने बड़ी रखाई से इनकार कर दिया था। वो इसी खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। वो चाय पीना ही नहीं चाहता, उसने लाउंज में आके कहा था। वो मेरा सामना करना नहीं चाहता। आप देख रही हैं कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है, उसने अंकल जहांगीर का चेहरा सुर्ख होते हुए देखा था। अलीज़ा, तुम उसे जाकर कहो कि मैं बुला रही हूँ, नानू ने अंकल जहांगीर को जवाब देने की बजाय उससे कहा था। वो एक बार फिर वापस पलट गई थी। इसे अपने पीछे अंकल जहांगीर की आवाज़ सुनाई दी थी। वो एक बार फिर नानों से कुछ कह रहे थे। उमर इस बार इसके पैगाम पर बड़ा कुटा था। मैं एक बार बता चुका हूँ कि मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे बाहर आना है। तुम जाकर ग्रहणी से कह दो और प्लीज़ अब दोबारा यहाँ कोई पैगाम लेकर मत आना। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो, उसने हासी तलही से अलीज़ा से कहा था। उसे याद नहीं पड़ता था कि उमर ने कभी इस तरह उसे झिड़का हो। वे एक बार फिर पलटी थी, तभी एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर जहांगीर अंदर आ गए थे। आपको मेरे कमरे में इस तरह दाखिल होने का कोई हक नहीं है, उसने उमर को तेज़ आवाज़ में कहते हुए सुना था। अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, वहाँ ठहरे या चली जाए। ये कमरा मेरे बाप का है, अंकल जहांगीर ने जवाबन कहा था। लेकिन आपका नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, उमर ने तुरशी से उनसे कहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा खुदगर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार शख्स नहीं देखा, अंकल ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया था। हाँ, मैं खुदगर्ज, खुद पसंद और गैर जिम्मेदार हूँ क्योंकि आपका ही बेटा हूँ, उमर ने उन्हें उसी लहजे में जवाब दिया था। अलीज़ा को अंकल जहांगीर के पीछे अलीज़ा को अंकल जहांगीर के पीछे दरवाजे में नानू नजर आई थी। मैं तुमसे आखिरी बार साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मुझे जितनी बात करनी थी कर चुका हूँ, अब और कोई बात करना नहीं चाहता। आपको पहले भी मैं इनकार कर चुका हूँ, अब भी इनकार ही करता हूँ और मेरा जवाब आइंदा भी यही होगा। अब आप मेरा पीछा छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। उमर, तुम्हें क्या हो गया है, इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, इस बार नानू आगे आई थी। मैं बिल्कुल ठीक बिहेव कर रहा हूँ, आप नहीं जानती ये मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। मैं जानती हूँ और मेरा ख्याल है जहांगीर जो कह रहा है इसमें कोई हर्ज नहीं, नानो इस बार धीमे लहजे में बोल रही थी। उमर हैरान नजर आया। आप जानती हैं और फिर भी आपको इसमें आप जानती हैं और फिर भी आपको इस बात में कोई हर्ज नजर नहीं आ रहा। उमर तुम्हें शादी तो करना ही है तो फिर जहांगीर की मर्जी से करने में क्या हर्ज है। अलीजा ने एक शौक के आलम में नानो की तरफ देखा था मगर वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। आपके बेटे ने सारी जिंदगी दूसरे लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और ग्रैनी मैं इन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता। वो तुम्हें क्यों इस्तेमाल करेगा, तुम तो इसके बेटे हो। हर बाप अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचता है, हर बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। हर बाप नहीं ग्रैनी, हर बाप नहीं, कुछ बाप आपके बेटे जैसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखते हैं। ये जिस सियासतदान की बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। अगर बात खुशी की है तो मैं वहाँ शादी करके खुश नहीं रह सकता। ये मेरी खुशी के खातिर मुझे मजबूर ना करें। मगर ग्रैनी बात खुशी की नहीं है, बात कीमत की है। उन्हें मेरी बहुत अच्छी कीमत मिल रही है और ये मुझे बेच देना चाहते हैं। उमर तुम गलत कह रहे हो, नानो ने इसकी बात के जवाब में कहा था। मैं गलत कह रहा हूँ, उमर इस्तेहजाया अंदाज में हंसा था। ग्रैनी मैं गलत नहीं कह रहा, आप अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा नहीं जानती। उमर तुम्हें किस बात पर एतराज़ है, जहांगीर बता रहा था कि वो लड़की खूबसूरत है, तलीम याफ्ता है, इसका बाप मिनिस्टर है, इस मुल्क के चंद नामी ग्रामी खानदानों में से एक है। तुम्हें और क्या चाहिए, इस लड़की से शादी करके तुम्हारा अपना कैरियर बन जाएगा। मुझे कैरियर नहीं बनाना है, मुझे किसी नामी ग्रामी खानदान का हिस्सा नहीं बनना है, मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए। आधी ज़िंदगी बाप के इशारों पर नाचते हुए गुजार दी, बाकी की ज़िंदगी बीवी और उसके खानदान के इशारों पर नाचते हुए नहीं गुजारना चाहता। जिस लड़की की खूबसूरती और तलीम के बारे में ये आपको बता रहे हैं उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके कितने बॉयफ्रेंड्स हैं और उसका बाप उसे मुझसे क्यों ब्याहना चाहता है मैं ये भी जानता हूँ। उमर फजूल बातें मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए किसी बुरे करेक्टर की लड़की का इंतखाब क्यों करेगा, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो गई है। सामने खड़े हैं ये आपके, इस लड़की के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, आप इनसे ही पूछ लें, मुझ पर तो आपको यकीन ही नहीं है तो इनसे पूछें वो कितनी बाकिरदार लड़की है। उसने तह लहजे में कहते हुए बाप की तरफ इशारा किया था। तुम कितने बाकिरदार हो, जहांगीर ने सर्द लहजे में उससे पूछा। अगर तुम इस लड़की के बारे में सब कुछ जानते हो तो मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप मुझसे बाकिरदार होने के बारे में सवाल कैसे कर सकते हैं, आप तो ये सवाल करने के काबिल ही नहीं हैं। मेरा किरदार अच्छा नहीं है तो अपने बारे में क्या कहते हैं, फ़ौरन ऑफिस के एक चपड़ासी के सामने भी आपका नाम लिया जाए तो वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट पेश कर देगा। वह अब आपे से बिल्कुल बाहर हो चुका था। तुम जिस माँ के बेटे हो तुमसे मैं यही सब कुछ तवक्को कर सकता हूँ। अंकल जहांगीर अब भी फिर उठे थे। माँ के बारे में एक लफ्ज़ नहीं, जिस औरत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है उसके बारे में बात करने का कोई हक नहीं रखते आप। मैंने 3 साल तक फॉरेन सर्विस में रह के आपके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने अपने ज़मीर को बिल्कुल सुला दिया, आपने जिस तरह चाहा मुझे इस्तेमाल किया, आपकी वजह से मेरा करियर ख़राब हुआ, मेरा सर्विस रिकॉर्ड बुरा रहा, लेकिन मैंने वही किया जो आपने कहा। मगर अब नहीं, हर चीज़ की एक हद होती है और आपके नज़दीक मेरी हैसियत एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा नहीं है। मेरे वजूद को इस्तेमाल करके आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकते। अब मैं वही करूँगा जो मैं चाहूँगा, कुछ भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करूँगा। क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, आपने 3 साल तक मुझे इस्तेमाल किया है, तुमने मेरे लिए कुछ करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम जानते हो कि जिस जगह तुम्हारी पोस्टिंग हुई है वहाँ तुम जैसे जूनियर ऑफिसर की पोस्टिंग मेरी मदद के बगैर कैसे हो सकती थी। जो स्टार्ट मैंने तुम्हें तुम्हारी सर्विस में दिया वो बहुत कम लोगों को मिलता है, मगर तुम्हें मेरा कोई एहसान याद ही नहीं है। आपने मेरी पोस्टिंग इसलिए वहाँ करवाई ताकि आप इस सीट को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। आप मुझे फॉरेन सर्विस में लेकर ही इसलिए आए थे ताकि मुझे इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ और फ़ायदा हासिल कर सकें। तुम्हारी इस ज़िद की वजह से जानते हो मुझे कितना नुकसान पहुंच सकता है। इस बार उनका लहजा कदरे नरम था। मेरी बला से आपको क्या नुकसान पहुंचता है और कितना नुकसान पहुंचता है ये आपके सोचने की बातें हैं, मेरी नहीं। वो अभी भी उतना ही तल्ख था। तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। जानते हो इस लड़की से शादी करके तुम कहाँ पहुँच सकते हो। आप मेरा हमदर्द बनने की कोशिश मत करें, मैं उसे शादी करके कहीं नहीं पहुंचूंगा। हाँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। सर्विस में आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपके खिलाफ चलने वाली इंक्वायरीज की रिपोर्ट्स गायब हो जाएंगी। एम्बेसी के फंड्स में किया जाने वाला ब्लंडर गोल हो जाएगा और मुस्तकबिल के लिए जो परमिट और कोटे आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएंगे, मगर मुझे अब आपके लिए ब्लैंक चेक नहीं बनना। तुम इस सब के लिए बहुत पछताओगे। मैं पहले ही बहुत पछता चुका हूँ और अब नहीं पछताऊंगा। मैं तुम्हें आसमान पर ले जाना चाहता हूँ और तुम एक गटर के कीड़े बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो। हाँ, आप मुझे आसमान पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे गले में फंदा डालकर मुझे और ऊपर उठाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डालने वाला कौन है। मैं सूरत को देख लूंगा, जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। वो औरत मेरी माँ है और मैं उससे पिछले 6 साल से नहीं मिला, और आपको जानने के लिए मुझे किसी से कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर ही मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम्हें ये जो बोलना आ गया है तो सिर्फ मेरी वजह से। मेरे नाम, मेरी मदद के बगैर तुमसे कोई हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेगा। आपका नाम मेरे लिए किसी फ़ख्र का बायस नहीं है। आप अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर ऐसी रेपुटेशन वाले शख्स का हवाला देना बहुत बड़ी हमाकत है और मैं ऐसी हमाकत नहीं करता। उमर को जहांगीर जैसे लहक्का के बगैर भी बहुत से लोग जानते हैं, और वो उसके बगैर भी जिंदा रह सकता है। अगर मेरे नाम के साथ आपका नाम है तो ये मेरी मजबूरी है, मेरी ज़रूरत नहीं। मुझे फॉरेन सर्विस में लाकर आपने मेरी जो फेवर की, मैं वो लौटा चुका हूँ। अब ना तो आप ही मेरे लिए कुछ करें, ना मैं आपके लिए करूँगा। तुम मेरे किसी एहसान को लौटा नहीं सकते। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वो बहुत कम लोग अपनी औलाद के लिए करते हैं, और जो कुछ तुम बदले में मेरे साथ कर रहे हो वो भी कोई औलाद बहुत कम करती है। आपने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दुनिया से अनोखा हो। मैंने बचपन से आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम पर रुपया पैसा पानी की तरह बहाया, सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में तुम्हें तालीम दिलवाई, तुम्हारे कैरियर बनाया, और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आपने मुझ पर ये सारी इन्वेस्टमेंट अपने ही फायदे के लिए की। मुझ पर रुपया इसलिए बहाया ताकि बाद में आप मेरी अच्छी कीमत वसूल कर सकें, जिस तरह अब आप वसूल करना चाह रहे हैं। आपने कोई चीज़ भी मेरी खुशी के लिए नहीं की, अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए सोच कर की। आप वो इंसान है जो अपने अलावा किसी दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। आपकी हर सोच मैं से शुरू होती है और मेरे लिए पर खत्म हो जाती है। आप लोगों से ताल्लुक तब तक रखते हैं जब तक वो आपके लिए फ़ायदा मंद रहें। जब उनकी अफादियत खत्म हो जाती है तो आपके लिए उनकी अहमियत भी खत्म हो जाती है, और उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। उसकी तलही बढ़ती ही जा रही थी। जहांगीर ने उसे देखते हुए कहा था, ये मत भूलो कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। अलीज़ा ने उमर के चेहरे पर इस्तेराम देखा था। और आप भी ये ना भूलें कि आपको भी फैमिली मैन हो ही नहीं सकते, फैमिली आपकी सबसे आखिरी तरजीह है। उसने उमर को उंगली उठाकर कहते हुए सुना, मेरे बारे में फतवे देने की कोशिश मत करो। मैं कौन हूँ और क्या हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में ही बात करो। क्यों बात ना की जाए आपके बारे में? मैं तुमसे यहाँ फजूल बहस करने नहीं आया हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी सिर्फ हाँ में। उनका लहजा बेहद सर्द और खुश्क था, और मेरा जवाब नहीं में है वो इतना ही बेहोश था। जहांगीर इसे चंद लम्हे सुर्ख आंखों से घूरते रहे। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। मैं भी देखूं कि मेरी मदद के बगैर तुम कैसे सरवाइव करते हो। मुझे आपकी जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए, मगर जो कुछ दादा ने आपके लिए छोड़ा है उसमें से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, खास तौर से वो बैंक अकाउंट जिसे उनकी वसीयत के बावजूद भी मेरे हवाले नहीं किया। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ। वो सब कुछ मांग रहा हूँ जो आपका है ही नहीं, जो पहले से ही मेरा है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? वो यकदम चिल्लाया था। तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ना अपनी जायदाद से, ना पापा की जायदाद से। जहांगीर ने जहरीले लहजे में कहा था। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी से नहीं नहीं सुनी, इसलिए मुझे इस लफ्ज़ की आदत ही नहीं है। अब तुमसे भी ये लफ्ज़ नहीं सुन सकता। बात अगर कीमत चुकाने की करते हो तो ठीक है, फिर तुम भी कीमत चुकाओ। तुम्हें अपने आप पर खर्च किया जाने वाला रुपया एक इन्वेस्टमेंट लगता है तो ठीक है, तुम इसे इन्वेस्टमेंट समझो और मुझे उस पर मुनाफा दो इस शादी की सूरत में। वो फंकारे थे। और मैं भी ये नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। आपने मुझ पर जो खर्च किया अपनी मर्जी से किया, मैंने आपसे कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कहा, और जो आपने किया वो हर बाप करता है। आपने ऐसा हास किया क्या जिसकी कीमत मैं आपको चुकाऊं? तुम तो मुझे अपना बाप मानते ही नहीं, फिर किस हवाले से इन सारी लग्जरीज को अपना हक समझते हो? तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें सड़क पर ले आऊंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुमसे कभी मेरा कोई रिश्ता था। मैं फिर भी आपकी बात नहीं मानूंगा, और जायदाद में जो मेरा हिस्सा है मैं वो भी लूंगा। जो रास्ते आप इस्तेमाल करेंगे वो रास्ते मेरे लिए भी अनजान नहीं है। अगर तुम ये शादी नहीं करते तो वो सारा रुपया लुटाओ जो मैंने तुम पर खर्च किया है। पापा की जायदाद से मिलने वाला हिस्सा भी इन्हीं अखराजात में आ जाता है जो मैंने तुम पर किए थे, और इसके अलावा जो जितनी रकम तुम्हें पे करनी है वो मेरा वकील बहुत जल्द बता देगा। अगर तुम अपने हिस्से के लिए कोर्ट में जाना चाहते हो तो शौक से जाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम कितने पानी में हो। जहां तक तुम्हारे करियर की बात है तो फॉरेन सर्विस तो तुमने छोड़ ही दी है, और तुम सोच रहे हो कि तुमने मुझसे पीछे छुड़ा लिया है। तुम पुलिस ज्वाइन कर रहे हो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। मेरी पहुंच जहां तक है तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जिस शख्स की बेटी से तुम शादी करने पर इनकार कर रहे हो वो शख्स मेरे पीछे हट जाने पर तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। करियर की तो तुम बात ही ना करो, उस इनकार के बाद कम अज़ कम इस मुल्क में तुम्हारे लिए कोई करियर है ना ही कोई फ्यूचर। बाहर तुम रहना नहीं चाहते, अंदर मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। जॉब के चंद हज़ार रुपयों में तुम गुजारा नहीं कर सकते। मेरी तरफ से अब दोबारा तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिलेगी। तुम अपनी जॉब के जरिए पैसा बनाने की कोशिश करना, और ये हम होने ही नहीं देंगे। और फिर एक साल के अंदर अंदर तुम मेरे पास माफ़ी मांगने आओगे, तब तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार होगे। लेकिन इस वक्त मैं तुम पर थूकूंगा भी नहीं, उसके बजाय तुम्हें ठोकर मार दूंगा। ये है तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर जिसे हासिल करने के लिए तुम फॉरेन सर्विस छोड़कर यहाँ आ गए हो। अंकल जहांगीर के लहजे में बेहद जहर था। अलीजा साकित खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। नानो इस वक्त बिल्कुल ही खामोश थी, और उमर के चेहरे पर तो इस वक्त वहशत के अलावा और कुछ देख नहीं रही थी। वह खामोशी से गहरे सांस ले रहा था, मगर उसकी सुर्ख आंखें और भींचे हुए होंठ ऐसे पुरसकून जाहिर नहीं कर रहे थे। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस बार आपसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ, वो घर्राया। मैं तुम्हारे लिए कोई जाय फरार ही नहीं छोड़ूंगा, जहांगीर ने उतने ही सर्द लहजे में कहा था। आप हर रास्ता बंद नहीं कर सकते, कोई ना कोई रास्ता तो हर इंसान के पास होता है, मेरे पास भी है, अलीजा ने इसे उल्टे कदमों से पीछे जाते और कहते हुए सुना था। उसने अंकल जहांगीर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट देखी थी, और फिर उसने उमर जहांगीर को बिजली की सी तेजी से साइड टेबल की दराज खोलते और रिवॉल्वर निकालते देखा था। अगले ही लम्हे उसने अपने वजूद को खौफ से सर्द होते पाया था। उमर, उसके लहजे से बेहतिया चीख निकली थी, और अब भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, वो रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटा रहा था।
अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे नावल अमर बेल, लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द